হে ভগবান, দিব্য কাজী ও আধ্যাত্মিক তত্ত্ব বিত সম্পূর্ণ রূপ সে ইনকে ঋণ জো আপকে পাশ হে নেই বল সকতে ব্রহ্মা কা আয়ু মে কি আপ দো রূপ মে প্রকাশিত হতে হ্যাঁ, বাহ্য রূপ মে আচার্য রূপ মে আর চৈত্য রূপ মে অন্তর্যামী আর ইস প্রকার আপ বদ্ধ জীবন কা উদ্ধার করতে হ্যাঁ, ইনকো আপকে পাশ জানা কা মার্গদর্শন দেনে সে ইয়ে এক শ্রীমদ তৎপর্য, ইয়ে এক শ্রীমদ ভাগবত কা শ্লোক হে, জো ভগবান কৃষ্ণ নে কহা, নে উদ্ধব উদ্ধব কো ভগবান কৃষ্ণ কো কহে, শ্রীকৃষ্ণ সে সম্পূর্ণ উপযুক্ত উপদেশ যোগ কে বারে মে শূন্য কে বার ওম জ্ঞান গৌড়িয় বৈষ্ণব পরম্পরা কাপচামি ইয়ে শ্রী চৈতন্য চরিতামৃত সর্বশ্রেষ্ঠ শাস্ত্র, তো কেসে শাস্ত্র মান যাতে তো বেদ নেই হে ঋগ যজুর অথর্ব সাম নেই হে, মহাভারত রামায়ণ নেই হে, পুরাণ শাস্ত্র নেই হে, উপনিষদ নেই হে, ব্রাহ্মণ আরণ্যক নেই হে, তো কেসে শাস্ত্র মান যাতে কি এসমে ভগবান চৈতন্য মহাপ্রভু কি লীলা সংকলিত হে আর এসমে সমস্ত শাস্ত্র কা মূল লক্ষ্য আর আধা বর্ণিত হে, কৃষ্ণ প্রেম ভক্তি প্রাপ্ত করনা, জো বেদ শাস্ত্র মে সুপ্ত রূপ মে ইয়া সূক্ষ্ম রূপ মে প্রকাশিত হতে হ্যাঁ, ও সম্পূর্ণ প্রকট ও স্পষ্ট হতে হ্যাঁ শ্রী চৈতন্য চরিতামৃত মে কি ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ বৈষ্ণব মোক্ষ প্রাপ্ত করনে সে কৃষ্ণ প্রেম ভক্তি জীব কা বাস্তবিক প্রয়োজন হ্যাঁ, তো ও কৃষ্ণ প্রেম ক্যা হ্যাঁ আর কেসে প্রাপ্ত হতে হ্যাঁ আর কেসে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু কি লীলা মে ও প্রেম প্রয়োজন প্রকট হতে হ্যাঁ, উসকা পুরা বর্ণন হ্যাঁ শ্রী চৈতন্য চরিতামৃত মে, পুরা নেই হ্যাঁ শ্রী কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী স্বয়ং লিখতে হ্যাঁ কি হর ক্ষণ মে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু ইতনা সুন্দর রহস্যময় লীলা বিলাস কিয়ে হে, ও হর ক্ষণ মে चैतन्य महाप्रभु की लीला का वर्णन करना तो हजार हजार क्रॉ क्रॉ पुस्तक में उसका चैतन्य महाप्रभु का एक क्षण की लीला का पूरा वर्णन क्रॉ क्रॉ पुस्तक में संकलन करना संभव नहीं है। और मैं कृष्णस्कृत स्वामी लिखते वो महान प्रेम सागर से एक दो बूंद संकलन करता हूं इस चैतन्य चरितमृत में। तो कृष्ण प्रेम प्राप्ति वो ही जीव का वास्तविक प्रयोजन है, उसका वर्णन है इस चैतन्य चरितमृत में। सामान्यतः प्रेम बल के लोग सोचते हैं कि ये कुछ हल्का भावना। आजकल ये प्रेम प्यार शब्द बहुत सामान्य बन गया है। युवक युवती कुत्ता कुत्ती वो संबंध जो है हम ऐसे उसको प्रेम बोलते, लेकिन वो तो प्रेम नहीं है। वो प्रेम संपूर्ण निर्मल है। वो प्रेम क्या है, वो राधा कृष्ण संबंध में प्रेम होते हैं। तो हम वो प्रेम से बहुत दूर है, बहुत बहुत दूर। वो तथाकथित प्रेम जो है इस भौतिक जगत में वो राधा कृष्ण शुद्ध निर्मल प्रेम का विकृत रूप है, दूषित प्रकाशन है। फिर भी वो प्रेम प्राप्ति जीवन का एक ही प्रयोजन है। तो कैसे प्रेम प्राप्त होते हैं उसके बारे में श्री रूप गोस्वामी प्रभुपाद श्री चैतन्य महाप्रभु का आदेश के अनुसार भक्ति रसामृत सिंधु में हमको उपदेश दिया कि प्रेम प्राप्ति मार्ग में आठ सोपान है। आदो श्रद्धा तथा साधु संग तथो भजन क्रिया अथो नाथ निवृत्ति तथो निष्ठा सूचिस्तथा तथा सक्तिस्तथो भाव तथो प्रेमाभ्युदंचति सादा कानयम प्रेम न प्रादुर्भावे भवेत क्रम। तो पहला चार सोपान है श्रद्धा साधु संग भजन क्रिया और अनाथ निवृत्ति। अनाथ निवृत्त होने के बाद उन्नत साधन ये साधना भक्ति पंथा है। तो उन्नत साधना होती है जिसमें निष्ठा रुचि आसक्ति कृष्ण के लिए आसक्ति और भाव होते, फिर प्रेम प्रकाशित होते। लेकिन ये पूरा भक्ति मार्ग गुरु की कृपा पर निर्भर करते हैं। इसलिए श्री चैतन्य चरितमृत का आरंभ में गुरु तत्व आलोचित होते हैं। इस चैतन्य चरितमृत में बहुत बहुत मधुर रसमय रहस्यमय कहानी है चैतन्य महाप्रभु और इनके प्रियतम भक्तों के बारे में। और इस चैतन्य चरितमृत में भी गहरा तत्व ज्ञान है। तो पहले समझना चाहिए, तो गुरु की स्थिति, गुरु शिष्य संबंध क्या है। श्री चैतन्य चरितामृत का पहला श्लोक है, वंदे गुरुन ईश भक्तां ईशां ईशावतारकां तत्प्रकाशांस्त तत्शक्ति कृष्ण चैतन्य संगीतम, कृष्ण चैतन्य संगीतम। तो संगीतम इसका अर्थ है पूर्ण अवगत होना, पूर्ण मालूम होना। तो कैसे चैतन्य महाप्रभु पूर्ण अवगत होते हैं? तो चैतन्य महाप्रभु अकेला नहीं है, चैतन्य महाप्रभु सदैव इनके भक्त के साथ। तो भक्त कौन कौन है? वंदे गुरुन, गुरुजन। तो गुरु एक नहीं, मंत्र गुरु एक है, मंत्र गुरु और सब शिक्षक गुरुगण कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने। मंत्र गुरु एक है लेकिन शिक्षा गुरु अनेक होते। तो वंदे गुरुन, गुरुन मतलब बहुवचन, ईश भक्तां और भगवान के सब भक्त, ईशां चैतन्य महाप्रभु स्वयं ईश भगवान है, ईशावतार काम स्वयं भगवान अवतारी है कृष्ण, और कृष्ण का अभिन्न राधा भाव द्युति सुललित रूप है कृष्ण चैतन्य, और सब अन्य अवतार है अवतारी है, अर्थात सभी अवतार के उत्सव श्रोत, और अवतार अनेक है। रामादि मूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठन् नानावतारम् अकरोत् भुवनेषु, किन्तु कृष्ण स्वयं समभवत् परम पुमान् यो गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। रामादि बलराम रामचंद्र, ऐसे मत्स्य कौरम वराह नृसिंहदेव इत्यादि अवतरण करते हैं, हमारे बीच में उपस्थित होते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु के साथ नित्यानंद प्रभु बलराम अवतार और अद्वैत आचार्य महाविष्णु अवतार। तो नित्यानंद अद्वैत आचार्य सदैव महाप्रभु के साथ आते हैं। तत्प्रकाशं तत्छक्ति कृष्ण चैतन्य संहितम, और अन्य भक्त भी है, कोई कोई है शक्ति तत्व, चैतन्य महाप्रभु के पार्षद में शक्ति तत्व है, गदाधा पंडित, रामानंद राय, जगदानंद पंडित, और जीव तत्व है श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद। तो ये सब गहरा विषय है, तो ये सब समझना चाहिए गुरु के द्वारा। इस श्लोक में उद्धव जिनके गुरु कृष्ण स्वयं थे, उद्धव विख्यात थे क्योंकि वे बृहस्पति का शिष्य थे और इनका ज्ञान और बुद्धि बृहस्पति जैसी, लेकिन परम तत्व ज्ञान स्वयं भगवान श्री कृष्ण के सुने। तो ऐसे भी अर्जुन श्री कृष्ण से भगवद गीता उपदेश सुने। तो अर्जुन पंच पांडव के अन्यतम तृतीय भाई है और पंच पांडव के गुरु धौम्य थे, अर्थात गुरु पुरोहित। लेकिन परम तत्व ज्ञान अर्जुन सुने श्री कृष्ण से। तो ऐसे उद्धव श्री कृष्ण से उद्धव गीता सुने और सुनने के बाद यही श्लोक बोले, जिसमें उद्धव भी तत्व ज्ञान कहते हैं कि क्रो वर्षों का आयु में ब्रह्मा जी जैसे दीर्घायु होने के भी महान पंडित और विद्वान जन आपकी दया का पूर्ण विवरण नहीं कर सकेंगे क्योंकि आपकी कृपा अपार है। कैसे? तो सब बोलते भगवान की दया, भगवान की कृपा, ऐसा बोलते हैं, लेकिन वो कृपा क्या है आज हम थोड़ा बात की इसके बारे में। तो लोग बोलते दुर्गा पूजे में बोलते धनं देही, यशं देही, यशो देही और जनां देही, रूपवती भार्य देही, विशो जही देही देही देही, मुझको दो 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 दो, जाओ फटाफट, धन जन सुंदरी सब कुछ मुझको दो और मेरे शत्रुओं को मरा दो। लेकिन यही भगवान की कृपा नहीं है। भगवान की कृपा है यही भाव से संचारित होना, न धनम न जनम न सुंदरीम कवितम वा जगदीश कामये नव जन्मनी जन्मनीश्वरे भवतद् भक्ति रहे चुकी था। ये भगवान सब कुछ जो याचनीय है इस भौतिक जगत में उसमें मेरी कोई रुचि नहीं है। तो ये खाली मेरी प्रार्थना है कि हर जन्म में मोक्ष नहीं मिलके भी हर जन्म में मैं आपकी अहितु की सेवा प्राप्त करूंगा। तो भगवान की कृपा असीम है क्योंकि वे स्वयं आते हैं और अर्जुन को भगवद गीता कहते हैं और आचार्य का रूप में सामान्य लोग के बीच में उपस्थित होते हैं और हृदय में अंतर्यामी रूप में लोग को प्रेरणा देते हैं। हे जीव, मुझको स्मरण करो और मूर्ख दुर्धर मत हो और एक जीव यदि वो हृदय प्रेरणा सुनते हैं तो फिर उत्साही होते हैं भगवान के चरण में शरण लेना। फिर श्री कृष्णा जो सब लोग की इच्छाएं जानते हैं, व्यवस्था करते हैं कि वो व्यक्ति गुरु के शरण में आ सकते हैं। तो यही भगवान की कृपा है। भगवान की कृपा नहीं है धन जन सुंदरी इत्यादि प्राप्त करना। भगवान की कृपा है धन जन सुंदरी की इच्छा से अनासक्त होना। और जैसे कि वो इच्छा बिल्कुल नहीं होती, ये भगवान की कृपा है। तो वास्तविक गुरु कौन है? जो सितार सिखाते हैं या हारमोनियम सिखाते हैं या सुंदर भाषा में कृष्ण लीला वर्णन करते हैं? तो यही अलंकृत भाषा से सावधान करो। बहुत बार देखते हैं जो ऐसे अलंकृत भाषा बोलते हैं तो वास्तविक सत्य तो नहीं बोलते। भगवान की रसमय लीला सुनना बहुत ही मधुर है, लेकिन जब तक हमारा आकर्षण होते हैं इस भौतिक तथाकथित माधुर्य पर, इस भौतिक माधुर्य जो वास्तव में कड़वा है, तो जब तक हमारा आकर्षण होते, जब तक हमारी कुछ भी आसक्ति होते हैं धन जन सुंदरी इत्यादि अन्याभिलाष के लिए, तब तक हम अधिकारी नहीं हैं वो कृष्ण की माधुर्य लीला सुनने के लिए। और सुनने से हम वो सर्वोत्तम माधुर्य लीला की सर्वश्रेष्ठता और चिन्मयता स्वीकार नहीं करके सोचेंगे कि वो कृष्ण गोपियों के साथ नाचते हैं, वो मैं और मेरी प्रेमिका का व्यवहार जैसे है। कृष्ण और मैं तो एक ही है। कृष्ण गोपियों के साथ नाचते हैं और मैं मेरी गर्लफ्रेंड के साथ नाचता हूं, हम एक ही है। खरीब में कृष्ण से और थोड़ा अच्छा हूं। तो इस प्रकार की भूल धारणा से वो वास्तविक गुरु हमको रक्षा करते हैं। यथार्थ संबंध ज्ञान देने से। जब तक संबंध ज्ञान नहीं होते हैं तब तक अभिधेय अर्थात भक्ति योग का प्रश्न नहीं होते हैं। और अगर संबंध और अभिधेय नहीं है तो कैसे प्रयोजन प्रेम प्रयोजन प्राप्त करना संभव है? तो कुछ भी प्रश्न नहीं है। तो धीरे धीरे साधु सावधान, तो प्रेम प्रयोजन है लेकिन पहले उपयुक्त होना चाहिए। वो प्रेम का राज्य में प्रवेश करने के लिए गोलोक धाम जाना इतना सरल नहीं है। तो पहले काम भौतिक या जड़ काम क्रोध लोभ मोह मादा मात्सार्य से संपूर्ण मुक्त होना चाहिए और चेतना पूरा तन्मय होना चाहिए भगवान की सेवा में। तो इसलिए वास्तविक आचार्य गण तो सबको प्रेम के बारे में इतने से नहीं बोलते, क्योंकि सामान्य लोग प्रेम शब्द सुनने से उसको अच्छी तरह नहीं समझते। तो पहले बार बार सेवा करना, तो ये उपदेश देना है। प्रेम का आधार है सेवा। तो सेवा के बिना भी प्रेम शब्द का कोई अर्थ नहीं है। तो साधारण जीवन में हम ऐसे देखते हैं कि आजकल ऐसे लव मैरिज होते हैं प्रेम से, इतने सा प्रेम होते हैं। लेकिन देखते हैं कि ऐसे लव मैरिज तो तुरंत ही टूट जाते हैं। क्यों? क्योंकि तो लव तो सिर्फ महसूस करने से तो लव नहीं होते। आई लव यू, तो ये खाली बोलने से या महसूस करने से तो वो लाभ नहीं होता। वो खाली सिनेमा में है ऐसा होता। लेकिन विवाहित जीवन में वो वृत्ति क्या है? जिम्मेदार है, एक वो जिम्मेदार से सेवा करना है। तो पति जिम्मेदार लेते हैं और पत्नी और बच्चे का पालन करने के लिए, और माता तो सेवा करते हैं। तो दोनों सेवा करते हैं। अगर सेवा भावना नहीं हो तो मैं खाली आईने के सामने बैठ के लिपस्टिक लगूंगी तो सेवा नहीं होती है। तो इतने से सुंदर होने के भी तो वो प्रेम भाव, वो कृत्रिम प्रेम भाव तो तुरंत ही टूट जाएगा। तो एक उदाहरण है कि एक आदमी अगर ऑफिस में ही काम करते हैं तो घर वापस जाते हैं और घर वाले तो आजकल तो घर वाले नहीं है, सब ऑफिस वाले हैं और फैक्ट्री वाले हैं, लेकिन 20 साल के पहले के तो उदाहरण है, तो घर वाली है घर में, तो पति घर वापस जाते हो, पत्नी बोलते ओ तुमको इतना प्रेम करता हूं, इतना सब प्रेम करती हूं, तो बोलते हो वो अच्छा है ठीक है, तो क्या बनाई मेरे लिए आज, क्या चपाती या परोठा या इडली या नहीं कुछ नहीं, लेकिन तुमको बहुत प्रेम करते हो, तो मुझको प्रेम मत करो चपाती बनाओ। तो आई लव यू बोलना का कोई जरूर नहीं है, चपाती बनाना उसका जरूरत है। अगर चपाती बनाना है तो आई लव यू का बोलने का कोई जरूरत नहीं, तो स्पष्ट है, सेवा करने से स्पष्ट होते है कि प्यार होते हैं, और अगर सेवा नहीं करना है तो जितने भी बोलना है प्यार तो उसमें कुछ नहीं होता। यही भौतिक उदाहरण है, तो आध्यात्मिक क्षेत्र में भी तो ऐसे भी, तो खाली प्रेम बोलने से कृष्ण प्रेम नहीं होता, सेवा भाव होना चाहिए। तो इसलिए आचार्यों विशेषकर साधना की प्रथम अवस्था में कृष्ण प्रेम के बारे में इतना सा नहीं बोलते, बोलते कि प्रेम प्रयोजन है, लेकिन पहले शिष्यों को सेवा करने से कहते हैं, क्योंकि सेवा करने से प्रेम का उदय आपने आप होते हैं। प्रभुपाद बहुत बार ये उदाहरण दिया है कि प्राचीन भारतीय संस्कृति में बचपन में विवाह होते हैं, तो लड़का तो करीब 8 साल का उम्र और लड़की 3 साल, नहीं जानते क्या शादी है क्या, तो कुछ ज्ञान नहीं, तो फिर भी जबरदस्त शादी होती। फिर जब दोनों थोड़े बड़े होते हैं, तो लड़की जब 12-13 साल की उम्र होते हैं, तो स्वामी का घर जाते हैं, और उसके पहले भी कभी कभी जाते हैं और कुछ ऐसे कुछ मिठाई ले जाते हैं, और स्वामी का घर मतलब स्वामी के माँ बाप के घर जाके तो स्वामी की सेवा करते हैं, और वो सेवा करने से अपने आप वो संबंध स्थापित होते हैं स्वामी और स्त्री। तो ऐसे पूर्व काल में तो आज जैसे विवाहित जीवन में इतना सा तकलीफ नहीं था, आज काल पिया 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 इतने से बोलना है, लेकिन पूर्व काल में इतने से बोलना तो बिल्कुल नहीं था, बोलना तो नहीं था लेकिन था, क्योंकि वो सेवा भाव था। तो ऐसे कृष्ण भक्ति में ये चंद्र शाखा न्याय है, जरा प्यार शुद्ध निर्मल कृष्ण प्रेम से बहुत दूर है, लेकिन ये चंद्र शाखा न्याय ये बहुत है कि एक छोटा सा बच्चा तो माँ से पूछते हैं कि मैं सुना कि चंद्रमा है, वो चंद्रमा क्या है? तो बच्चा का माँ, बच्चे की माँ वो बच्चा को बाहर लेके दिखाते, तो देखो वो पैर के दो बड़े शाखा है नहीं, और बीच में वो गोल जो है जो सूर्य जैसे है ज्योतिर्मय, वो ही चंद्रमा। तो पहले वो पैर जो वो बच्चा जानते वो वृक्ष क्या है, तो पहले उसको देखते कहते हैं, फिर उसके बाद चंद्रमा। और ऐसे वशिष्ठ अरुंधति न्याय है, तो वशिष्ठ एक आकाश में वशिष्ठ एक बड़ा नक्षत्र है, और वशिष्ठ के पास एक चौथी तारा है अरुंधति, वशिष्ठ की पत्नी। तो अरुंधति तारा लक्ष्य करने के लिए, तो अगर एक व्यक्ति दूसरे को अरुंधति को दिखाते हैं तो पहले उसको वशिष्ठ दिखाते हैं, तो देखो वो बड़ा नक्षत्र है नहीं, हाँ देखता हूं, तो उसके पास देखो वो छोटी सी तारा है, वो अरुंधति। ठीक, तो ऐसा है ये जरा तथाकथित प्यार कृष्ण भक्ति से बहुत दूर है, लेकिन अभी हमारी दृष्टि शक्ति गोलोक तक नहीं जाती। तो ऐसे ये जरा प्यार का उदाहरण के द्वारा हम धीरे धीरे निर्मल कृष्ण प्रेम जो जीव का प्रयोजन है तो उसको समझ सकते हैं। तो दोनों में एक ही भाव होते हैं, वो जड़ प्यार जो है वो अस्थाई है, अपूर्ण है, और कृष्ण प्रेम वो स्थाई और पूर्ण है, लेकिन दोनों में आधार में सेवा। तो गुरु का कर्तव्य है शिष्यों को सेवा भाव दिखाना कि हम कृष्ण दास अनुदास अनुदास। तो तत्व ज्ञान सिखाते हैं, और वो तत्व ज्ञान का सार है कि कृष्ण ही भगवान है, और इनकी सेवा और विशेष का इनके सेवकों की सेवा दास अनुदास होना। तो ये ही जीवन की संसिद्धि है, और कैसे वो सेवा करना है व्यवहारिक रूप में सिखाते हैं। तो ये गुरु का कर्तव्य है। हरे कृष्ण।
तो अगर किसी को संबंध ज्ञान से वो स्फूर्ति नहीं दे रहा है, लेकिन देख रहे हैं कि और भक्त जो अनुष्ठान कर रहे हैं वो देख के उनको अच्छा लगता है, तो वो भी ऐसे अनुष्ठान करते
हैं। हाँ, बोला था कि संबंध ज्ञान के बिना अभिधेय नहीं होते, अर्थात संबंध ज्ञान के बिना वो भक्ति योग सेवा नहीं करना है। तो एक उदाहरण है कि संबंध ज्ञान के बिना एक व्यक्ति अगर देखते हैं कि अन्य भक्तों सेवा करते हैं और उसको अच्छा लगता है और वो भी कुछ सेवा करते हैं, ऐसा होता है। हम बहुत बार देखते हैं कि लोग आते हैं और भक्ति के बारे में कुछ भी नहीं जानते भी, और सेवा कार्य में भाग लेते हैं, तो उससे फायदा होते हैं। लेकिन नियमबद्ध वास्तविक सेवा का शुरू होते हैं आदर्श तथा साधु संग अथा भजन क्रिया, अर्थात वो भक्ति जो हम करते हैं दीक्षा लेने के पहले वो पूर्ण नहीं होते हैं। भक्ति योग का वास्तविक शुरू होते हैं दीक्षा का समय, उसके पहले सब कुछ जो होते हैं वो खाली प्रस्तुति होते हैं दीक्षा लेने के लिए। तो हम कुछ सेवा कर सकते हैं, लेकिन वास्तविक साधना, नियमित साधना का शुरू होते हैं दीक्षा के साथ। इसलिए वो भक्ति साधना की तालिका में रूप गोस्वामी लिखते हैं आदौ गौरवाश्रय कृष्ण दीक्षा अनुशिक्षणम विश्रम्भेन गुरु सेवा। 64 नियम में पहला 4 नियम है गुरु चरण में आश्रय लेना, गुरु से दीक्षा लेना, गुरु से शिक्षा लेना और विश्रम्भेन गुरु सेवा। अनुकूल भावना से गुरु सेवा करना, तो उसके पहले लोग भक्ति और सेवा कर सकते हैं, लेकिन वो पूर्ण नहीं है। दिक्क काले भक्त करे आत्मसमर्पण, शेय काले कृष्ण तारे करे आत्मसम। दीक्षा का मतलब आत्मसमर्पण, और आत्मसमर्पण करके कृष्ण वो ही भक्त इनके परिका में एक सदस्य जैसे स्वीकार करते हैं। तो फिर संबंध ज्ञान सीखना है, फिर भक्ति योग, वास्तविक भक्ति योग का शुरू होते हैं। हरे कृष्ण। कोई दूसरा प्रश्न है?
गोविंद
गोविंद कल बोला कि गोविंद ये नाम का अर्थ है इंद्रियों को आनंद देने वाला। दूसरा अर्थ है पृथ्वी को आनंद देने वाला, गायन को वो साधारण अर्थ है, गायन को आनंद देने वाला। तो भक्तों प्रयास करते हैं कृष्ण को आनंद देना और कृष्ण इनके भक्तों को आनंद देते हैं। तो ऐसे भक्ति का मतलब सेवा, और वो सेवा करना है। जैसे कि भगवान का इंद्रिय सुख होगा, इनके चिन्मय दिव्य इंद्रियों का सुख होगा, और अभक्ति का मतलब वो सभी प्रयास अपना इंद्रिय सुख के लिए। तो इसलिए ये सब तथाकथित भक्ति, हम स्वीकार नहीं करते, भगवान स्वीकार नहीं करते। भक्ति का मतलब भगवान की प्रसन्नता के लिए। तो अगर हम उस्ताद जैसे ढोलक बजाते हैं और बहुत भाव से गाते हैं, लेकिन ये सब हमारा खुद का आनंद के लिए है, तो वो भक्ति नहीं है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे।